परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह पाप का खत भी तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआए तो देगा जवाब उसके अपने तुम्ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआए तो देगा जवाब उसके अपने तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह पाप का खत भी तुम्ही तो हो, उसका पाप रखना वो भी तुम ही तो हो।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवारों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरिया नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर अंतिम दिनों के बारे में क्या कहता है और हर एक विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करता है उद्धार प्राप्त करता है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और जकरिया नामक पुस्तक उसके 13 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन अलग अलग स्थानों पर बैठ करके भी एक साथ रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज हम फिर से जकरिया की पुस्तक उसके 13 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, ताकि वे संसार के उन तमाम बुराइयों से हटकर आपके मार्ग में चल सकें। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो बहुत ही निराश हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं, आपकी चंगाई के इंतजार में हैं। प्रभु जी, आप उनकी वेदनाओं को, उनके पीड़ाओं को जानते हैं, उनको आप छुएं, चंगाई दें, उनके पापों को आप क्षमा करें, ताकि प्रभु हर एक जीवन आप में धन्य होने पाए, वे इस बात को समझने पाए कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं और इस समय भी आप उनके साथ में हैं। अपने वचन से उन्हें सिखाएं, अपने वचन से उन्हें आशीष करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब जकरिया की पुस्तक उसके अध्याय 13 का अध्ययन आरंभ करेंगे। अध्याय 13 का विषय है इसराइल का शोधन। आप स्वयं ही देख रहे होंगे कि जकरिया की पुस्तक कैसी महत्वपूर्ण है। मैंने इस पुस्तक को सदैव सराहा है और मुझे सदैव यही बोध हुआ है कि यह पुस्तक एक परित्यक्त पुस्तक है। मैं तो जब जब इस पुस्तक को पढ़ता हूँ, कुछ न कुछ नया ही सीखता हूँ। और सच तो यह है कि यह अंतिम भाग ऐसा महान है कि मैं इसकी व्याख्या उस ऊंचे स्तर पर नहीं कर सकता जिस ऊंचे स्तर के यह पुस्तक है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपके लिए इसका अर्थ उतना ही व्यक्त करूँ जितना अर्थ यह मेरे लिए रखती है। मेरे प्रियो, मुझे यहां अपने संबंध में एक कहावत स्मरण आ रही है, हम अति शीघ्र वृद्ध होते हैं परंतु अति शीघ्र बुद्धिमान नहीं होते। जी हां, पिछले अध्याय में हमने एक निश्चित विकास को देखा है जो पृथ्वी पर प्रभु यीशु के आगमन की योजना के निमित्त था। उस समय जब वह अंतिम बार यरूशलेम गया, तब उसे 30 टुकड़े चांदी में बेच दिया गया था और यह कोई और नहीं प्रभु यीशु था। प्रभु यीशु के प्रथम आगमन पर जकरिया के भविष्यवाणी का मात्र एक भाग ही पूरा हुआ था। इसका अर्थ है कि शेष भविष्यवाणी प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर पूरी होगी, अर्थात द्वितीय आगमन पर। अपनी भेड़ों के लिए जान देने वाला एक अच्छे चरवाहे को उस समय लोगों ने तुच्छ जाना था। एक और चरवाहा है जो भविष्य में आएगा और आने वाला है, अभी तक तो वह आया नहीं है और कलीसिया के पृथ्वी पर से उठाए जाने तक वह प्रकट नहीं होगा। वह एक झूठा चरवाहा होगा जो इसराइल को और संपूर्ण संसार को महाक्लेश में अर्थात महासताव में ले जाएगा। उस समय एकमात्र उद्धार प्रभु यीशु के पुनः आगमन से होगा, जब वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएगा। मेरे मित्रों, केवल वही है जो इस संसार में शांति स्थापित कर सकता है। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें, आप शांति स्थापित नहीं कर पाएंगे। एक बार अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति आइजनहावर अपने शांति यात्रा पर निकले। उन्हें अनेकों राष्ट्रों से शांति वार्ता करनी थी। उनका नारा था, न्याय से शांति लाना। यह वास्तव में ही एक प्रशंसनीय प्रयास था। उन्होंने 22,370 मील की यात्रा 19 दिनों में पूरी की। यद्यपि उसके बाद अनेक राष्ट्रपतियों ने अधिक लंबी यात्रा की और पृथ्वी पर शांति लाने का प्रयास किया, परंतु जिस समय 1959 में जब श्री आइजनहावर शांति यात्रा पर थे, उस समय संसार में शांति की आवश्यकता थी और लाखों लोग शांति की आशा लिए उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। मनुष्य के मन को सबसे अधिक शांति की लालसा होती है। और रोचक बात तो यह थी कि उन्होंने उस समय शांति यात्रा की थी जब हम एक बालक का जन्म दिवस मनाते हैं। और लिखा है लुकार्ची सुसमाचार 2 अध्याय उसके 14 पद में, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। मैं स्वीकार करता हूं कि उस समय सन 1959 में बहुतों ने सच्चे मन से शांति के लिए प्रार्थना की थी। उनकी सफलता और शुभ यात्रा के लिए लोगों के मन से सद्भाव और प्रार्थना निकली थी। लोग भ्रम में नहीं थे कि एक मनुष्य विश्व शांति स्थापित कर सकता है। उनका टीवी भाषण सुनकर लोग ऐसा प्रतीत करते थे कि उन्हें स्वयं विश्वास नहीं था कि वह विश्व शांति स्थापित कर सकते हैं। मेरे विचार में उनके मन में कोई महान विचार भी नहीं था, क्योंकि वह एक सैनिक थे और सच्चाई का सामना करना जानते थे। परंतु मेरे विचार में वह तनाव दूर करना चाहते थे कि बुरा दिन टल जाए और उनके देश का उद्देश्य और मनसा प्रकट हो तथा अवधारणाएं एवं अनुचित प्रतिनिधित्व का भ्रम दूर हो। मेरे मित्रों, उस समय से अब तक जितने वर्ष बीत चुके हैं, एक ही बात स्पष्ट है कि 2013 वर्ष पूर्व जन्मा वह शिशु ही सच्चाई शांति की आशा है, प्रभु यीशु। केवल वही इस पृथ्वी पर शांति ला सकता है और लाएगा भी। आप विश्वास करें या ना करें, वह सदाकालीन नाम रखता है। यशाया के पुस्तक 9 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, शांति का राजकुमार, उसके पास अस्थाई शांति लाने का कार्यक्रम और योजना है। वह इस पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य लाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 27 पद में भी वह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। जी हां, वह अपनी शांति देता है जो असीम है। संसार की शांति क्षणिक और थोड़े समय के लिए होगी, परंतु उसका शांति अनंत काल के लिए होगा। भविष्यद्वक्ता विशेष करके जकर्याह इस योजना को विस्तार सहित व्यक्त करता है। अन्य अंशों की नाई इस पुस्तक में भी उस राज्य के लक्षण व्यक्त हैं, जिन्हें हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। मेरे मित्रों, यह तो हम देख ही चुके हैं कि इस राज्य के कुछ भौतिक पक्ष मनुष्य को आकर्षित करते हैं। रेगिस्तान गुलाब के समान पल्लवित होगा, लंगड़े उछलेंगे, कूदेंगे, अंधे देखेंगे और कुछ लोग नए यरूशलेम में सोने की सड़कों को देखने की लालसा में हैं। परंतु इस परिदृश्य में हम आत्मिक पक्ष से चूक जाते हैं। हम इस पुस्तक में देख चुके हैं कि प्रभु राज्य में सत्य का बोलबाला होगा। जकर्या की पुस्तक 8 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। वह समय बड़े आनंद का समय होगा। जी हाँ, यह सब प्रभु राज का भौतिक नहीं आत्मिक पक्ष है, जिसमें मुख्य बात है शांति की। जब प्रभु यीशु राज करेगा तब वह सब जातियों को शांति का मार्ग सिखाएगा। हम जकर्या की भविष्यवाणी में संसार की अस्थायी शांति की योजना को देख रहे हैं। पहले आगमन के समय प्रभु यीशु को तुच्छ जानकर बेच दिया गया था और अन्य जातियों के हाथ पकड़वाया गया था कि वे उसे क्रूस पर चढ़ा दें। इसके बाद एक अंतराल आता है जिसकी चर्चा वह नहीं करता है। यह कलीसिया का समय है जिसमें हम सब वास करते हैं। इस युग के पश्चात निकम्मा चरवाहा अर्थात ख्रीस्त विरोधी मसीही विरोधी आएगा। वह प्रभु राज की अपेक्षा महाक्लेश महासताव को लेकर के आएगा। उसका निरंकुश विश्वव्यापी शासन तब समाप्त होगा जब प्रभु यीशु दोबारा इस पृथ्वी पर राज स्थापित करने के लिए आएगा। जकर्या के पुस्तक 13 अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। यहां हमें शाब्दिक अनुवाद करने की आवश्यकता है। जो यह सोचते हैं कि परमेश्वर का प्रयोजन इसराइल के साथ समाप्त हो गया है, वे विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर जो कहता है वह सच है। आप इस अध्याय को पढ़कर इसका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप शब्द जाल ना बुने। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप में धर्मशास्त्र के आत्मा प्रेरित वचन होने का मान नहीं है। जैसा हमने 12 अध्याय में देखा है, परमेश्वर की योजना का केंद्र यरूशलेम है। इस पुस्तक के अंतिम 3 अध्यायों 12 से लेकर 14 अध्याय तक अर्थात 12, 13 और 14 अध्याय में यरूशलेम का नाम 21 बार आया है। मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर का अभिप्राय वास्तविक यरूशलेम नगर से नहीं होता तो वह इतनी बार यरूशलेम का नाम नहीं लेता। अधिकांश रूढ़िवादी टीकाकार भी इसे भौगोलिक यरूशलेम ही मानते हैं। मैं आपको डॉक्टर मेरिल एफ हंगर की टीका का एक अंश पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। वह कहता है, यहूदी राष्ट्र के पुनरुद्वार और परिवर्तन की भविष्यवाणियों का शाब्दिक अर्थ ही इन भविष्यवाणी के प्रकाशन का परिदृश्य स्पष्ट कर सकता है। अन्य कोई भी व्याख्या जकर्या की भविष्यवाणी का परिपूर्ण परिप्रेक्ष्य अनदेखा करती है, उसके तत्कालिक संदर्भ को दूषित करते और इसके अर्थहीन को गूढ़ता प्रदान करते हैं और अनिश्चितता और उलझन की दलदल में यह अंत होती है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ इसी के द्वारा हम स्पष्टीकरण को देख पाते हैं, अन्य किसी के द्वारा से नहीं। उनके इस विचार पर मैं तथास्तु कहता हूं। जी हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि इसको आत्मिक परिप्रेक्ष्य में समझना परमेश्वर के वचन की आत्मा आधारित प्रेरणा का इनकार करना है। मेरे मित्रों, हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसराइल का राष्ट्रीय शोधन। जकर्या की पुस्तक 13 अध्याय के 1 पद में लिखा है, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। कहता है उस समय, या तो हम देख ही चुके हैं कि उस समय से अभिप्राय है महाक्लेश का युग, और महाक्लेश के बाद प्रभु का आगमन और उसके राज्य की स्थापना। मेरे मित्रों, यह पद प्रभु यीशु के प्रथम आगमन का संकेतक नहीं है। उस युग में उसने दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता नहीं बनाया था। उस समय तो उद्धारकर्ता का त्याग करके उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 3 पद में पौलुस लिखता है, परंतु वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। अब यहां पर हम पढ़ते हैं एक बहता हुआ सोता। परमेश्वर का शोधक सामर्थ्य है जो क्रूस पर प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा बहाया गया था। उसके प्रथम आगमन पर तो इसराइल ने अपने उद्धारकर्ता को स्वीकार नहीं किया था, अतः यह सोता उसके द्वितीय आगमन पर बहाया जाएगा। इस अध्याय में परमेश्वर की योजना का वर्णन चल रहा है। हमने अध्याय 12 में देखा था कि उस समय परमेश्वर इसराइल पर अपना आत्मा उंडेलेगा। इसका उल्लेख भविष्यद्वक्ता योएल नबी ने भी किया है। उस समय उनके लिए एक सोता बहाया जाएगा। उस समय उन्हें बोध होगा कि मसीह उनके लिए क्रूस पर मर गया। मेरे मित्रों, हमने देखा है कि वे उसकी ओर निहारेंगे। स्मरण रखें कि यह परमेश्वर का वचन है और वह निश्चित बात करता है। जो वह करता है, जो वह बोलता है, सत्य है। लिखा है, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है। वह दिन वास्तव में प्रायश्चित दिवस होगा, प्रभु ईश्वर के पुनः आगमन का दिन, प्रायश्चित दिवस का दिन होगा। परमेश्वर का आत्मा उनकी आंखों पर से पर्दा हटा देगा। पौलुस कहता है कि यह पर्दा तो आज भी हट सकता है यदि वे अपने पाप को देख पाएं, उससे मन फिरा पाएं। मनुष्य की समस्या मन की समस्या है, न कि बुद्धि की। बौद्धिक समस्या किसी की नहीं है। सच तो यह है कि मनुष्य में जगत के सृजनहार के साथ व्यवहार करने की बुद्धि नहीं है। परमेश्वर अनंत है। मनुष्य की समस्या है कि वह पाप का त्याग करना नहीं चाहता है। यह इसराइलियों के साथ भी सच है, अन्य जातियों के साथ भी सच है, यह हम सब के साथ भी सच है। अतः हम इसका सामना करें तो कितना अच्छा होगा। मेरे मित्रों, आज हम संसार में जी रहे हैं और हम में से कितने जो श्रोता इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अपने पाप में जीवन जी रहे हैं। उनको पता है, आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। आपको पता है कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके बड़े लोग नहीं जानते हैं, परंतु आप गुप्त में पाप कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वह सब कुछ देखता है। आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसे त्याग दें। क्या आप ऐसा करेंगे? निर्णय आपके हाथ में है, यह किसी प्रकार का दबाव नहीं है। जीवन आपका है, परमेश्वर ने आपको दिया है और इसका फैसला भी आपको ही करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, यदि आप अपने गलतियों को मान लेते हैं, प्रायश्चित करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो निश्चय जानिए कि वह आपके पापों को क्षमा कर देंगे, आपको नया जीवन देंगे और आपके जीवन में शांति प्रदान करेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज ही अपने सारे पापों को प्रभु यीशु के सामने मान लें। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। एक सही निर्णय लें अपने जीवन के लिए और प्रभु की संगति में बढ़ते जाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना।